लाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सोजीवं स्वाद्वैतं स्वावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमोऽयं विष्णुपादायं कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। संकर्षण कारणतसै गर्भदोष च पायवधीसै शेषश्च जस्यांश कला सनित्यानन्द खरं शरणं ममास्तु। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रातःकालीन सत्र में भागवत कक्षा में सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कुछ समय भागवत के चौथा स्कंद 20वां अध्याय 11 नंबर श्लोक पाठ करके श्रवण करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, शिक्षणीय है, इसको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बातें श्री प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखे हैं। उदासीनम इव अध्यक्षम द्रव्य ज्ञान क्रियात्मतम क्रियात्मनम कूटस्थम इमं आत्मनं जो वेदाप्नोति सोहनं उदासीनम इव अध्यक्षं द्रव्यज्ञान क्रियात्मनं कुटस्थम इमं आत्मनं जो वेदाप्नोति सोहनं उदासीनम इव अध्यक्षम द्रव्य ज्ञान क्रियात्मनाम कुटस्थम इमम आत्मानम जो वेदाप्नोति शोभनम उदासीनम इव अध्यक्षम द्रव्य ज्ञान क्रियात्मनाम कुटस्थम इमम आत्मानम जो वेदाप्नोति शोभनम। पढ़िए एक दो। उदासीनम इव अध्यक्षम द्रव्य ज्ञान क्रियात्मनाम कुटस्थम इमम आत्मानम जो विदाप्नोति शोभनम। बताइए उदासीनमिमध्यक्षम द्रव्य ज्ञान क्रियात्मनाम कुटस्थम इमम आत्मानम शोभनम। उदासीनम इव अध्यक्षम द्रव्य ज्ञान क्रियात्मनाम कुटस्थम इमम आत्मानम जो विदाप्नोति शोभनम। उदासीनम इमम अध्यक्षम द्रव्य ज्ञान क्रियात्मनाम कुटस्थमिममात्मानं जो वेदाप्नोति शोभनम्। उदासीनम् उदासीन इव केवल अध्यक्षम् अधिक्षक द्रव्य भौतिक तत्व ज्ञान ज्ञानेन्द्रिय क्रिया कर्मेन्द्रिय आत्मानम तथा मन का कूटस्थम स्थिर इयम इह आत्मानम आत्मा य जो जो कोई वेद जानता है आपनोति प्राप्त करता है शोभनम कल्याण। श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद एवं तात्पर्य बहुत सुंदर, ध्यान से सुने। जो पुरुष यह जानता है कि पांच तत्व कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिया तथा मन से निर्मित यह शरीर केवल स्थिर आत्मा द्वारा संचालित होता है, वो भौतिक बंधन से मुक्त होने योग्य है। भौतिक बंधन से हम लोग बांधे हुए हैं, इससे कैसे बंधन से मुक्त होंगे इसका वर्णन आज श्लोक में है। जो पुरुष यह जानता है कि पांच तत्व इस शरीर कैसे बनाया है, इस शरीर में कौन सा तत्व है, किस मतलब पांच तत्व कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया तथा मन से निर्मित यह शरीर केवल स्थिर आत्मा द्वारा संचालित होता है। मतलब शरीर अलग है आत्मा अलग है, शरीर और आत्मा का पार्थक्य जो जान लेता है ये भौतिक बंधन से वो मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रभु श्री भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने पहले गीता का उपदेश दिया। गीता जब उपदेश किया सबसे पहले इस शरीर और शरीरी आत्मा के बारे में समझाया, ये शरीर आत्मा से अलग है। जो ज्ञान को जान जाता है वो भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य कितना सुंदर लिखे, देखिए इसको जाने कैसे। इस श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य अब बंधन से किस प्रकार मुक्त हो सकता है, मनुष्य अब किस प्रकार बंधन से मुक्त हो सकता है। पहली बात जो मनुष्य के जानने की है वो यह है कि जीव शरीर से पृथक है। जीव शरीर से पृथक है। जीव देही है और यह भौतिक शरीर देह है। जीव देही अर्थात आत्मा है और शरीर देह है। भौतिक शरीर देह है। देह निरंतर परिवर्तनशील है किंतु आत्मा स्थिर है, इसलिए आत्मा को कूटस्थम कहा जाता है। देह में जो परिवर्तन होते हैं ये तीन गुणों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होते हैं। जिसने आत्मा की स्थिर स्थिति जान ली है उसे सुख तथा दुख के रूप में प्रकृति के गुणों के आवागमन से विचलित नहीं होना चाहिए। जिसने आत्मा की स्थिर स्थिति जान ली है उसे सुख तथा दुख के रूप में प्रकृति के गुणों के आवागमन से विचलित नहीं होना चाहिए। भगवद गीता में भी भगवान ने कहा है कि शरीर पर तीनों गुणों की प्रतिक्रिया से सुख तथा दुख आते जाते रहते हैं, अतः मनुष्य को इन बाह्य गतिविधियों से विचलित नहीं होना चाहिए। यद्यपि कभी कभी मनुष्य इनमें फंस जाता है किंतु इसे उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। जीवात्मा को बाह्य शरीर के कर्म तथा फल के प्रति अनासक्त रहना चाहिए। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पांच भौतिक तत्व क्षिति जल पावक गगन तथा समीर एवं सूक्ष्म तत्व मन बुद्धि तथा अहंकार से बना हुआ यह शरीर आत्मा से सर्वथा भिन्न है। अतः मनुष्य को इन आठ तत्वों की प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया से विचलित नहीं होना चाहिए। इस अनासक्ति की अवस्था को प्राप्त करने की व्यवहारिक विधि है, देखिए बहुत मार्मिक बात है, इस अनासक्ति की अवस्था को प्राप्त करने की विधि है क्या? भक्ति की जाए, इस शरीर से भक्ति की जाए। शरीर में जो आसक्ति बनी हुई है इस आसक्ति से मुक्त हो जाएंगे। क्या करना पड़ेगा? भक्ति जाजन करना पड़ेगा, भक्ति की जाए। जो व्यक्ति 24 घंटे एक दो घंटा नाम जप करने से नहीं होगा, 24 घंटे भक्ति में लगा रहते हैं सुबह से लेकर सोने से पहले तक, वही बाह्य शरीर के घात प्रतिघातों से अनासक्त रह सकते हैं, जब मनुष्य किसी विशेष विचार में मग्न होता है तो किसी अन्य बाह्य कर्म को न तो देखता है न सुनता है। इसी प्रकार जो भक्ति में पूर्णतया निमग्न रहते हैं उन्हें अपने बाह्य शरीर की परवाह नहीं रहती। भक्ति में डूबना है, डूबने का कौशल जानना चाहिए, कैसे डूबे। इसी प्रकार जो भक्ति में पूर्णतया निमग्न रहते हैं उन्हें अपने बाह्य शरीर की परवाह नहीं रहती। यह अवस्था समाधि कहलाती है। यह अवस्था क्या है? समाधि की अवस्था। जो समाधि में स्थित होता है वो उच्च कोटि का जोगी कहलाता है, वो जोगी है जो 24 घंटे भक्ति में डूबा हुआ है, वो जोगी है। यही पे श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य समाप्त हो। यह विशेष बात आज के श्लोक में है कि शरीर जो है शरीर आत्मा से पृथक है। जो इस तत्व को जान लेता है वो भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते जाने कैसे, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर कोई भक्ति में डूब जाए, भक्ति में 24 घंटे व्यतीत करे तो वो इस शरीर के प्रति जो तादात्म्य है, शरीर के प्रति जो आसक्ति है, ये आसक्ति को काट पाएंगे, मतलब आसक्ति से मुक्त हो जाएंगे। शरीर के प्रति जो आसक्ति है, जब जीव जन्म लेते दो गलती करते हैं, एक जो चीज नहीं है वो आप उसको अपना मान लेते, और जो है उसको छोड़ देते, उसको त्याग कर देते। जैसे ये शरीर हमारा नहीं है, ये शरीर हमारा नहीं है, शरीर से संबंधित जो भी वस्तु है उसको अपना मान, शरीर को मान लिया और शरीर के साथ जो भी संबंधित वस्तु है उसको मान लिया अपना, एक गलती है। और करना क्या चाहिए था, और एक गलती क्या, जो अपना है श्याम सुंदर श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान श्याम सुंदर हमारा है, इसको मैं त्याग दिया, भगवान के साथ संबंधित जो भी वस्तु है उसको मैं त्याग दिया, ये भी गलती है। क्या करना पड़ेगा, जो अपना है वो अपना लेना चाहिए और जो अपना नहीं है उसको छोड़ देना चाहिए। ये जो हम लोग जप करते, मैंने एक संतों से पूछा था भजन कैसे करें, तो उन्होंने कहा जो अपना है उसको अपना लीजिए, जो अपना नहीं है उसको छोड़ दीजिए, अपना भजन हो जाएगा। भजन किया नहीं जाते, भजन अपना पर हो जाता है। कैसे होगा, ना जो अपना है जो स्वयं सुंदर ठाकुर जी अपना है उसको अपना लेना, और जो शरीर अपना नहीं है, शरीर के साथ संबंधित जो भी स्त्री पुत्र कन्या ये अपना नहीं है, इसे आसक्ति ममता बन चुकी है, इसको काटना पड़ेगा। जब तक नहीं काटेंगे तब तक भजन नहीं हो पाएगा, और कुछ हो सकते है। तो आज श्लोक में श्रील प्रभुपाद लिखे 24 तत्वों से शरीर बना हुआ है, 24 तत्वों से इस शरीर बना हुआ है। महाभूतानि अहंकार बुद्धिर अव्यक्तमेव च, इंद्रियानि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचरं। देखिए 13वें अध्याय का आज मैं कुछ संक्षेप में वर्णन कर रहा है। त्रयोदश अध्याय में अर्जुन 6 प्रश्न किए, प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान और ज्ञेय के बारे में अर्जुन सुनना चाहते हैं, ये क्या है 6 तत्व, तो भगवान धीरे धीरे से एक एक का उत्तर देंगे। दूसरा श्लोक में इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्त विधीयते क्षेत्रज्ञम च एतद् जोवित्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इदम शब्द का अर्थ लिया, ये आत्मा शरीर से पृथक है। इदम शरीर इदम सन्निकटम, ये जो शरीर देखते हैं ये शरीर किससे पृथक है, आत्मा से पृथक है, इसको तुम जानो। भगवान ने कहे इदम शरीरम कौन्तेय, हे कौन्तेय इदम शरीरम क्षेत्रम इति अभिधीयते, जिसको क्षेत्र कहते हैं ये आत्मा से पृथक है। इदम का अर्थ है आत्मा से पृथक। टीकाकारों ने लिखे एतद् जो व्यक्ति तम प्राहु क्षेत्र गति तद्विद, क्षेत्रगम चापि मम विधि, भगवान के मत में ज्ञान क्या है, जो क्षेत्र क्षेत्र को जान लेता है वही मेरे मत वही ज्ञान है, जो क्षेत्र के बारे में जानता है और क्षेत्रज्ञ के बारे में जानता है वही ज्ञान है। जत तज ज्ञान मतंग मम, उसके बाद तत् क्षेत्रम, जो यहाँ फिर 6 प्रश्न फिर किया, तत् क्षेत्रम जच्च जादृक्च जत विकारी जतस्य जत सचो जत प्रभावश्च तत् समासे न मे श्रृणु। समासे न मतलब संक्षेप से सुनो मुझसे, क्या संक्षेप से, जो ये क्षेत्र है इसका स्वरूप क्या है, इसका विकार क्या है, इसका प्रभाव क्या है, इस प्रकार स्वरूप प्रभाव विकार कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, इस सब के बारे में मुझे बोलिए। और भगवान कहे कि मैं तुमको संक्षेप में सुना, तो ज्यादा बोलने से ज्यादा समय चला जाएगा, भजन नहीं हो पाएगा, साधन नहीं कर पाओगे, इसलिए संक्षेप में सुन के रखो। उसके बाद बोले तले ये तो मैं आप संक्षेप में बोलते, इसका कोई विस्तार से वर्णन होगा कि नहीं, बोले हाँ, भगवान ने कहा इसका विस्तार वर्णन और ग्रंथों में है। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदवीर विविधय पृथक ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चित। छंद भी ऋषियों ने इसके बारे में बहुत गाया है, ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदवीर विविधय पृथक। छंद भी वेद की ऋचाओं से बहुत इस क्षेत्र क्षेत्र के बारे में कहा चुका है, और ब्रह्मसूत्र वेदांत सूत्र में इसका वर्णन हो चुका है, तो हाँ विस्तार से है, मैं तुमको संक्षेप में सुनाता हूँ। उसके बाद भगवान इस क्षेत्र का स्वरूप बताते हैं, जिस शरीर 24 तत्वों से बना हुआ है इसके बारे में बोलते हैं। महाभूतानि अहंकार बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्रियानि दशैकम च पंचचेन्द्रिय गोचरा। महाभूतानि, ये पांच महाभूत, क्षिति अफ, क्षिति पावक, गगन, समीर और क्षिति जल, पावक, गगन तथा समीर। महाभूतानि, महाभूतानि अहंकार, अहंकार है महाभूतानि अहंकार बुद्धिर अव्यक्त, इस प्रकार समझे। अव्यक्त से मूल प्रकृति, अव्यक्त के क्या बोलते हैं, मूल प्रकृति। मूल प्रकृति कोई विकार नहीं, वो सबका कारण है, उसका कोई कार्य नहीं है। तप में कौन है, मूल प्रकृति। मूल प्रकृति के बाद कौन है, बुद्धि। बुद्धि को महतत्व लिया, बुद्धि का अर्थ क्या, महतत्व। महतत्व का विकार है अहंकार। अव्यक्त प्रकृति, बुद्धि अर्थात महतत्व, महतत्व से विकार क्या हुआ, अहंकार। अहंकार से पांच कर्मेंद्रिया, पांच ज्ञानेंद्रिया, एक मन, और उसके बाद और ये जो पांच ज्ञानेंद्रिया है इसका पांच विषय है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये है 24 तत्व। पांच महाभूत, पांच कर्मेंद्रिया, पांच ज्ञानेंद्रिया, पांच विषय, एक मन, अव्यक्त प्रकृति, महतत्व और है अहंकार। ये 24 तत्व मिलाकर ये शरीर बना हुआ है। हाँ, और ये जो शरीर को जो चलाता है वो जो आत्मा, ये जो तत्व को जो जान जाता है वो ये भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है। तो जानेंगे कैसे, प्रभुपाद जी ने एक अच्छा मतलब ये दे दिया, विशेष बात बताया कि इसको जाने कैसे, भौतिक बंधन से जीव मुक्त होंगे कैसे। प्रभुपाद जी लिखे कि इस जो शरीर के साथ जो तादात्म्य बन चुका है, जो शरीर को जो अपना मान लिया है, जो तादात्म्य है, इसको काटने के लिए क्या करना है, इसमें भक्ति की जाए। भक्ति क्या है, कलियुग के युग धर्म नाम संकीर्तन। कोई अगर निष्ठा से प्रभु का नाम जप करे, कीर्तन करे, नवविधा भक्ति पूर्ण नाम होते है। नवविधा जो भक्ति है ये किससे होगा, भगवान नाम कीर्तन से होगा। नवविधा भक्ति क्या है, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन अर्चन वंदन दास्यम सक्षम आत्मनिवेदनम, ये है नवविधा भक्ति। ये नवविधा भक्ति कहाँ से होगा, एकमात्र हरि नाम संकीर्तन से। हाँ, कलियुगे नाम रूपे कृष्ण अवतार तथि लगे अवतीर्ण हम चैतन्य अवतार, मैं चैतन्य महाप्रभु इसलिए अवतरित हुए, किस लिए, नाम प्रभु को वितरण करने के लिए। नाम और नामी अभिन्न है, इस तत्व को जानने के लिए। फिर तो इन शरीर के बारे में अर्जुन ने पूछा, इस क्षेत्र क्या है, तो भगवान ने कहा क्षेत्र जो है ये 24 तत्व का, 24 तत्व से बनाया हुआ है, इसको क्षेत्र कहते हैं। तो इसका स्वरूप क्या है, जब प्रश्न किया तत्क्षेत्रम, हाँ तत्क्षेत्रम जच्च जादृक्ष जद्विकारी, इसमें इस क्षेत्र का स्वरूप क्या है और नेक्स्ट उसका विकार क्या है, इसके बारे में नेक्स्ट श्लोक में बोल रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में क्या है, इच्छा देश समुत्थेन, इच्छा देश सुखम दुखम संघात चेतना धृति। इच्छा देश संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। ये जो शरीर है इसे क्या विकार है, इसे क्या उत्पन्न होता है, ये शरीर के माध्यम से, शरीर से हमको क्या मिलता है ना, हमें से इच्छा कामना, ये वस्तु ये व्यक्ति ये चाहना, ये सबसे पहले भगवान ने लिया। जीव का सबसे बड़ा पाप और दुख का मूल कारण है इच्छा कामना, इसको हटाओ। हाँ, शरीर से पहला विकार क्या, पहला मल क्या, इच्छा। ये विकार, ये शरीर का स्वरूप है। शरीर का स्वरूप क्या है, महाभूतानि अहंकार बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्रियानि दशैकम च पंचचेन्द्रिय गोचरा। ये 24 तत्व है, इसमें पांचवें श्लोक में 24 तत्व के बारे में वर्णन है। छठा नंबर श्लोक में क्या है, इस शरीर से क्या पैदा होता है, क्या मिलता है जीव को, इच्छा देश संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम सविकारम एतत् क्षेत्रम सविकारम समासेन उदाहृतम। संक्षेप में कहता हूँ, इच्छा देश, इसलिए इच्छा को हमेशा इच्छा से दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो जीव को हमेशा निरंतर जलता रहना पड़ेगा, वो जलेगा। इच्छा, इच्छा अर्थात कामना, कामना को हटाना पड़ेगा। एकमात्र इच्छा क्या होना चाहिए? कृष्ण वांछा पूर्ति, कृष्ण वांछा पूर्ति आर नहीं कार्य, कृष्ण वांछा पूर्ति रूप आर नहीं, आर नहीं कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधन एत राधिका नाम पुराने वाखान। राधिका एकमात्र इच्छा क्या? कृष्ण की कैसे सुख मिले, उससे कुछ लेना नहीं है। क्या उससे कुछ लेना नहीं, क्या कुछ देना है? क्या देना है? कैसे प्रभु खुश होंगे। कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधन, हाँ यही तो राधिका नाम पुराने वाखान है। राधिका नाम किस लिए हुआ? आराधन से राधिका नाम हुआ। आराधना से वस्तु शक्तिशाली होती है। आराधना किसी चीज की आराधना करे वो वस्तु शक्तिशाली हो जाती है। आराधना किए बिना कोई वस्तु फल नहीं देगा। ये जो नाम साधन, ये आराधना रूप से लेना पड़ेगा, तब जाके नाम साधन जब साधन बहुत अच्छा से होगा। बिना आराधना किए न सुबह सुबह रात को बहुत कुछ खा गया फिर सुबह से अपना नींद आएगा, क्यों नहीं नींद आएगा? हाँ, इसलिए रात को खूब हल्का संपिल मतलब जीवन जीने के लिए खाना है, खाने के लिए जीना नहीं है। ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, हाँ कि मुझे साधन करना है। एक संत सुना रहे थे कि 3-4 घंटे के बाद ही जप होता है। 3-4 घंटे जप करने के बाद अच्छा जप सुनने को मिलता है, 1-2 घंटा जप में क्या होगा? तो इसलिए इच्छा, ईश्वरी से क्या क्या मिलता है जीव को, मैं इस भगवान कहते हैं इच्छा। इच्छा जो जीव को पाप और दुख में डालते हैं, हाँ इसलिए शरीर से हमेशा आत्मा को पृथक जाने। ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है, हाँ तो आत्मा शरीर से क्या मिलता है जीव को? इच्छा। इच्छा मतलब कामना। जीव को हमेशा क्या इच्छा करना चाहिए? कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधन। ससुख वासना शून्य कृष्ण सुख तात्पर्यमयी यह शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति क्या है? कृष्ण सुख तात्पर्यमय, कृष्ण के सुख के लिए जीना है और किसी चीज के लिए नहीं। और क्या करना पड़ेगा? ससुख वासना को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, ससुख वासना ये करने से मेरा सुख होगा, इसके पीछे नहीं चलना चाहिए। इच्छा देश क्या है? क्रोध, क्रोध होता है, क्रोध बाहर से प्रकाश होता है। देश जो है सूक्ष्म रूप को देश कहते हैं, अंतकरण में जो सूक्ष्म रूप में जो है इसको देश कहते हैं। देश को दिखाई नहीं देते, क्रोध को दिखाई देते, दोनों एक ही है, क्रोध और देश। क्रोध अंतकरण में जो है उसको सूक्ष्म रूप जो है उसको देश कहते। इच्छा देश सुखम, जो कुछ अनुकूलता में जो कुछ मिलता है वो मन को सुहाती है, उसको क्या कहते हैं? सुख, उससे सुख मिलता है। जो अनुकूलता में प्राप्ति में, हाँ सुख किसको कहते हैं? जो आसानी से प्राप्त हो गया, किसी प्रकार कोई झामेला नहीं है, उसे सुख मिलता है। और जो बहुत प्रतिकूलता से उसे दुख होता है। इच्छा देश सुखम दुखम। संघात क्या है? संघात ये शरीर, ये शरीर जो 24 तत्वों से बना हुआ है शरीर, ये भी एक यंत्रणा है। चेतना क्या है? चेतना है प्राण, चेतना क्या है? प्राण। धृति क्या है? धृति धैर्य धारण। अष्टादश अध्याय में सात्विक धृति, राजस धृति, तामस धृति 33, 34 और 35, ये तीनों श्लोक में सात्विक धृति, राजस धृति और तामस धृति के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये है शरीर का विकार, इच्छा देश संघातस चेतना धृति एतत् क्षेत्रम क्षेत्रम सविकारम समासेन उदाहृतम। हाँ इस क्षेत्र का विकार है, तो इससे बचना चाहिए। जब तक इसलिए प्रहलाद महाराज जब प्रार्थना किए, भगवान ने कहे प्रहलाद वर मांगो, तो प्रहलाद ने क्या कहे, नहीं प्रभु कुछ मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ नहीं नहीं कुछ लेना ही पड़ेगा, बिना वर दिए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो भगवान तो और प्रहलाद कहेंगे प्रहलाद कि प्रभु आप मुझे प्रलोभन मत दिखाइए, मामा प्रलोभयत, हाँ मुझे प्रलोभन मत दिखाइए, मामा प्रलोभयत पत्या आसक्तम कामेशु वरई, इस वर के वर से आप जो वर देंगे इस वरों से क्या होगा, मैं मतलब सांसारिक विषय में मैं आसक्त हो जाएंगे, इसलिए मुझे प्रलोभन मत दिखाइए। तो क्यों प्रलोभन इसको कहते, क्यों आप वर नहीं चाहते, कामना क्यों नहीं करते ना प्रभु, कामना से अगर काम अगर वर देना चाहे ए वर मुझे दीजिए, यदि राशि से मैं कामन वरांसम वरदर्शह कामानम हृदय असंग्रोहम भवतस्तु वृणे वरम, हे प्रभु वरम वृणे, इस वर को मैं मांगता हूँ, क्या वर, ये हृदय में कभी कामना ही उत्पन्न ना हो, कभी हृदय में कभी कामना ही उत्पन्न ना हो, इस प्रकार की वर मुझे दीजिए। तो अच्छा तुम वर क्यों नहीं चाहते हो, हे प्रभु कामना क्यों नहीं करते हो, हे प्रभु कामना से 10-12 उसका अवगुण है, कामना से क्या क्या जीव को मिलता है, क्या क्या अवगुण है कामना का, इसके बारे में बोल रहे हैं। इंद्रियानि मन प्राण धर्मोधि, इंद्रियानि मन प्राण आत्मा धर्मधितिर्मति ह्री श्री तेजस्मृति सत्यम जस्य नश्यन्ति जन्मना, ये 12 चीज जिनका आने से जिनके आने से नष्ट हो जाता है, क्या क्या, इंद्रियानि, इंद्रिया मतलब जो 10-11 इंद्रिया है, एक कमजोर पड़ जाएगा, कामना करते रहिए ये चाहिए वो चाहिए, उसके पीछे दौड़ते दौड़ते कामना छीन हो जाएगा, किंतु कामना कभी पूरी भी नहीं होगी, उस नष्ट हो जाएगा। इंद्रिया इंद्रियानि मन प्राण ये सब कमजोर हो जाएगा, इंद्रियानि मन प्राण आत्मा धर्म धितिर्मति श्री ह्री ह्री श्री तेज श्रुति सत्यम जैसे नश्यन्ति जन्मना, जिसका जन्म से जिसका प्राप्त करने से जीव का ये 12 गुण नष्ट हो जाता है। तो इसलिए हे प्रभु किसी प्रकार की कामना की लालसा नहीं है। तो इसलिए तो एखन शरीर के प्रति जो तादात्म्य बन चुका है, शरीर को अपना मान लिया है, इससे कैसे मुक्त होंगे, तो भगवान ने 20 साधन का उपदेश किया। कोई अगर 20 साधन का पालन करे, पढ़े, अच्छा से जाने, तो वो इस शरीर के साथ जो आसक्ति बन चुकी है ये आसक्ति से मुक्त हो जाएंगे। क्या 20 ज्ञान साधन है, अमानित्तम अदम्भितम अहिंसा क्षंतिर आर्जवम आचार्य उपासनम सत्यम शौचम आत्म विनिग्रह स्थर्यम आत्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम अशक्तिर अनभिसंग पुत्र दार गृहादिषु नित्यम च समचित्तम इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु मयि च अनन योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवितम अरतिर जन संसदि। ऐसा बोले साधन भगवान ने बताया, कोई अगर इस साधन को पालन करे तो शरीर के साथ जो आसक्ति बन चुकी है ये आसक्ति समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए अमानित्तम हमेशा मान देने की प्रवृत्ति, हमेशा एक जगह टीकाकरण लिखे जो भक्ति में सबसे पहले अभय को माना, भय रोहित भय का अभाव, अभय जो गुण है ये अभय को लिया, फिर आखिरी में लिया अमानित्तम, किंतु ज्ञान साधन में अमानित्य को पहले लिया, आखिरी में अभय को लिया, आखिरी में अभय को लिया। तो इसलिए यह अमानित्तम अदम्भितम, अमानित्तम क्या, किसी प्रकार मान की प्रतीक्षा नहीं करना, अमानित्तम अदम्भितम मतलब किसी प्रकार देखावट ही नहीं, हाँ भक्ति करना है सिर्फ प्रभु के प्रति विधान के लिए और किसी चीज के लिए नहीं। अमानित्तम अदम्भितम अहिंसा, किसी भी प्राणी को दुख नहीं देना, प्राणी से हृदय में कष्ट नहीं पहुंचाना। अमानित्तम अदम्भितम अहिंसा क्षांति, क्षांति का अर्थ सहनशीलता, सहनशीलता क्या ना, भक्तों का इतना सहनशीलता होना, सहनशील होना चाहिए कि किसी प्रकार की दुख, किसी प्रकार की कष्ट आवे तो उसको सहन करना सीखना चाहिए। अगर महाराज जी सुना रहे थे कि जीवन में कोई भक्त का सहनशीलता सीख जाए उसका कृष्ण भावनामृत एकदम टीका रहेगा आखिरी तक। इसलिए हमेशा जैसे दोनों जीभा है, जीभा के साथ क्या है, दांत है, कभी कभी दांत से जीभा कट जाती है, तो इसलिए दांत को कि आप उखाड़ के फेंक देंगे, नहीं फेंकेंगे। इसलिए किसी भक्त ने मुझे दुख दिया, किसी भक्त ने कुछ कष्ट दिया, इसलिए उसको मारना, उसके उससे मतलब रिवे उसके प्रतिशोध लेना, उसके प्रति देश करना, ये अपना ही अपने को ही कष्ट पहुँचाना कि अपना ही स्वरूप है। और जो पुरुष है और जो मनुष्य है और जो जीव है ये अपना ही स्वरूप है, ये मानना चाहिए। आत्मा सब शरीर में है, आत्मा क्या है, भगवान श्याम सुंदर की अंश है, इसको जान जो जाते हैं वो कभी किसी से हिंसा नहीं, हिंसा एकासी प्रकार की हिंसा है, कृत कारित और है अनुमोदन, ऐसे ले लेकर इसका 3 प्रकार 9 प्रकार 27 प्रकार 81 प्रकार की हिंसा शास्त्र में वर्णन है। तो फिर अमानितम अदम्भितम अहिंसा शांतिर आर्यवम, आर्यम मतलब सरलता, शरीर से सरलता, सीधापन सरलता, वाणी से सरलता और मन से भी सरलता, ये नहीं कि मन से कोई कुटिलता रहे हैं, तीनों तरफ सरलता होना पड़ेगा। आर्यवम आचार्य उपसनम शौचम स्थर्यम आत्म विनिग्रह, आचार्य के सामने ईश्वर महाराज कथा में हरिद्वार में सुना रहे थे कि आचार्य उपासना का अर्थ लिया कि गुरु के पास बैठ के सुनना चाहिए और दूसरा दीनत्व भावना सस्मिन, मतलब अपने में दीन की भावना रखना, सस्मिन दीनत्व भावना, अपने में दीनत्व भावना, दीन की भावना होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, गुरु के पास बैठकर भगवान की कथा सुनना चाहिए। आचार्य उपासना करता है तो दीपदान लेकर घुमाते रहना, ये आचार्य की उपासना नहीं है। आचार्य की उपासना क्या है, दीन भावना से गुरु के मुख से सुनना चाहिए, यही है आचार्य की यथार्थ उपासना। शौचम बाहरी शौच अंतर शौच, अंतर शौच कैसे होगा, हरिनाम करने से, प्रभु के नाम जप करने से, अधिक समय प्रभु के नाम चिंतन में रहने से क्या होगा, हृदय की पवित्रता आएगी। अब बाहरी शुद्ध शुद्धि भी होनी चाहिए। स्थौर्यम स्थिरता भी चाहिए, कभी 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 धीरज खो जाती है, खो जाता मतलब धीरज नहीं रहते हैं, स्थिरता हमेशा अटल रहना, नहीं नाम जप सर्वोपरि है, नाम भजन हरिनाम कीर्तन सर्वोपरि भजन है, इसी में लगे रहना चाहिए। न आज यहाँ काल वहाँ काल काल, आज कर्मयोग काल भक्तिजोग परसु ज्ञान योग, इसके पीछे नहीं चलना चाहिए, एक में रहना चाहिए, एक रस में रहना चाहिए, तब जाकर वो फल देगा। स्थर्यम आत्म विनिग्रह हमेशा संयम रहना चाहिए, संयम शुद्ध इंद्रिय संयम नहीं है, शरीर का संयम, मन का संयम, वाणी का संयम, ये सब संयम होना चाहिए, नतवा संयम नहीं रहे काम बारी जो वीर्य है वो नीचे की ओर आने लगेगा, संयम से ये ऊपर की ओर जाती है, जब ऊपर की ओर जाएगी तब कृष्ण भावना मतलब कृष्ण का अनुभव, कृष्ण भक्ति के मतलब अनुभव होने लगेगा, और जब तक काम बारी नीचे आएगा तब तक कृष्ण भक्ति का अनुभव नहीं होगा। तो इसीलिए हमें से संयम में रहना चाहिए, कभी कामबारी को मतलब वीर्य को नीचे आने नहीं देना चाहिए, इसलिए हमें से संयम रहना चाहिए। इंद्रियार्थेश वैराग्यम इंद्रिय विषय में वैराग्य होना चाहिए, विषय में उसमें चिपकना नहीं चाहिए, एकमात्र सुख की कृष्ण के व्यतिरिक्त और किसी विषय में सुख नहीं लेना चाहिए। कृष्ण प्रसाद, कृष्ण के वार्ता सुनना, कृष्ण के रूप को दर्शन करना, कृष्ण का ही कथा सुनना, और किसी का कथा नहीं सुनना। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार, किसी प्रकार की अहंकार नहीं करना। अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, हमेशा जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसका दोष का दर्शन करे। एक बार यदि मनुष्य जीवन का कोई अगर इस भक्ति करने का सुयोग मतलब खो जाए, भक्ति ना करे, वो 2.5 करोड़ वर्ष के मतलब समय बीतने के बाद उनका शरीर फिर मिलेगा। कितना वर्ष, कितना करोड़, 2.5 करोड़ जन्म के पश्चात, मतलब 2.5 करोड़ वर्ष, मतलब बहुत समय के बाद उनको फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। कहने का उद्देश्य यही है, इसीलिए जम कर प्रभु के नाम कीर्तन भक्त संग ऐसे प्रभुपाद जी ने लेके भक्ति करना चाहिए। शरीर के साथ जो आसक्ति बन चुकी है इसको काटने के लिए क्या करना है, भक्ति करना चाहिए। तो भक्ति करे कैसे, भक्ति करना है तो भक्त संगे भक्ति करना पड़ेगा। भक्त संगे न भक्ति उपजायते, अगर भक्त संग नहीं करे तो भक्ति कभी हृदय में आएगा ही नहीं। तो इसलिए भक्त संग की महिमा, और भक्त संग में अपराध की भावना है, अपराध होती है, तो इसलिए अपराध से बचकर भक्त संग करके हरिनाम करना चाहिए। और भक्त संग महिमा इतनी क्यों बताया, मतलब इतनी महिमा क्यों ना, भक्त संग जैसे जैसे भक्त संग मम तमो श्लोक जनेश सिक्खम संसार चक्र भ्रमतः सकर्म भी। हाँ, मम हे प्रभु, वित्रासुर कहते भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु आपके जनों से मेरा संग हो। मम तम श्लोक जनेश सिक्खम, हे प्रभु आपका जो जन है उनसे मेरा सुख हो। संसार चक्र भ्रमतः सकर्म भी, अपना कर्म के वजह से जितना मैं बहुत घूमा, बहुत संसार चक्र में बहुत भटका, बहुत घूमते रहा, संसार चक्र भ्रमतः सकर्म भी। हाँ, इसलिए हे प्रभु आपके भक्तों के साथ मेरा संग हो। और तन माया आत्मा आत्मज दार गृहेश आसक्त चित्तेश ननात भूयात, जो घर गृहस्थ में फंस चुकी है, जिसका देहात्म बुद्धि अभी तक नहीं जा चुका है, उसके उसके साथ मेरा संबंध ना हो। किसी जो देहा स्त्री पुत्र कन्या में जो आसक्ति है उसके साथ मेरा संग ना हो। किसके साथ संग हो, मम तमो श्लोक जनेश सक्षम, जो आपका जन है, जो आपका भक्त है, उनसे मेरा संग हो। तो क्यों हमारे भक्तों का क्यों संग मांगते हैं, भक्तों का संग इसलिए मांगता हो प्रभु कि आपका भक्तों के संग से आपकी जो मधुरमती मधुर जो कथा है ये सुनने को मिलेगा। हाँ, इसलिए देहात्म बुद्धि से मतलब यहाँ एक प्रश्न हम लोग उठा सकते,
समय हो चुका है।
यहाँ जो देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए, जैसे भागवत में जितना चरित्र है सब देहात्म बुद्धि से मुक्त हो। जैसे जड़भरत महाराज, जहो जुबैव मलबत उत्तम श्लोक लालसा, इसीलिए क्या उनको जब रघुगण ने बहुत कुछ तिरस्कार किया, बहुत कुछ बोला, उनको कुछ असर नहीं पड़ा उनके शरीर पे बिल्कुल, क्योंकि वो जानते थे इस शरीर है, आत्मा अलग है। हम लोग कोई कुछ अपमान करे, कुछ प्रसाद ना दे, हम लोग को आग बबूला हो जाते, अरे मुझे इतना सीनियर में मुझे सम्मान नहीं दिया, मुझे ये किया, लग जाते हैं। क्योंकि हम शरीर को आत्मा को शरीर को अपना मान लिया, देहात्म बुद्धि से भरा हुआ है। इसलिए देहात्म बुद्धि से हटने के लिए, इससे मुक्त होने के लिए क्या करना है, एकमात्र भक्ति। और भक्ति प्राप्त होती है भक्त के संग से, और भक्त संग से एक सबसे बड़ी मतलब बाधा है अपराध, भक्तापराध बन जाता है तो भक्ति रुक जाती है। इसलिए भक्तापराध से बचकर हरिनाम का आश्रय लेकर चलने से निश्चित रूप से अपना जो गंतव्य है, जो अपना जो धाम है, प्रभु का धाम श्री गोलोक धाम, अपना आप वहां पहुंच जाएंगे। शील प्रभुपाद की जय, गंथराज श्रीमद भागवतम की निताय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। यही समाधि की अवस्था है कि 24 घंटा डूबे रहे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैरे वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावत् जप जप करोति सकलं परस्मै नारायणायेति
लगाओ, दस रुपये सुरु करो, दस रुपये सुरु करो, मेरा ही प्लेट लगाओ।